26 नवंबर दिन सोमवार दिन भर मैं हूँ रेहान फजल। मध्य प्रदेश और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थमा।
कांग्रेस ने जो कंपेन उसमें वो कंपेन इतना आक्रामक नहीं था, 56 और 165 सीट का जो फासला है उसको पार करके।
राजस्थान में भी चुनाव प्रचार परवान चढ़ा, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी।
कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूँ कि 10 साल पहले 26 नवंबर को आतंकवाद की इतनी बड़ी भयंकर घटना घटी, सारी दुनिया हिल गई थी और कांग्रेस उसमें से चुनाव जीतने के खेल खेल रही थी।
सुनिएगा अपने पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर बुधवार को होने वाले मतदान से पहले आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से सत्तारूढ़ है और कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारत में मुंबई हमले की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। भारत की आर्थिक राजधानी कहलाने वाले मुंबई पर साल 2008 में आज ही के दिन पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए लश्कर ए तैयबा के चरमपंथियों ने एक साथ कई जगहों पर हमला किया था, जिसमें 160 लोग मारे गए थे और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। हमले के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने बंदूकधारी मोहम्मद कसाब को जिंदा पकड़ने में सफलता हासिल की थी, जिसे 4 साल बाद वर्ष 2012 में फांसी की सजा दी गई थी। संयुक्त अरब अमीरात ने ब्रिटेन के शोधार्थी मैथ्यू हेजेस को माफ कर दिया है, जिन्हें पिछले हफ्ते जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। संयुक्त अरब अमीरात के प्रवक्ता ने दावा किया है कि मैथ्यू हेजेस ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस के लिए काम कर रहे थे। जांच के दौरान ये पता चला कि मैथ्यू हेजेस जानकारी जुटाने के लिए दो अलग अलग पहचानों का इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी एक पहचान पीएचडी शोधार्थी की थी, जबकि दूसरी पहचान एक कारोबारी की, लेकिन ये उनकी पार्ट टाइम पहचान है, वो असल में सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हैं। ये थे संयुक्त अरब अमीरात की एक प्रवक्ता के शब्द। लेकिन ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने इस बात से इनकार किया है कि मैथ्यू संयुक्त अरब अमीरात में जासूसी कर रहे थे। उन्होंने मामले को जल्दी निपटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का शुक्रिया भी अदा किया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूक्रेन की नौसेना के 3 जहाजों को रूस द्वारा जब्त किए जाने की प्रतिक्रिया में यूक्रेन की संसद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और नेटो देशों के तमाम राजदूत आपात बैठक के लिए तैयार हो गए हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस और रूस नियंत्रित क्राइमिया के मध्य यूक्रेन के 3 जहाज रविवार को रूस ने जब्त कर लिए और इस दौरान चालक दल के 6 सदस्य घायल हुए, जबकि 23 सदस्यों को रूस ने पकड़ लिया। रूस की राजधानी मॉस्को में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन के जहाजों की मौजूदगी को उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। ये निश्चित तौर पर उकसाने वाली कार्रवाई थी। यूक्रेन के जहाजों ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। हर देश को दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। ये थे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के शब्द। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने इस पूरे मामले के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लगाने का आह्वान किया है, लेकिन उन्होंने जोर देकर यह भी कहा है कि इसका मतलब युद्ध की घोषणा नहीं है। इसराइली सेना ने कहा है कि दक्षिणी वेस्ट बैंक में उसके 3 सैनिकों पर अपनी कार चढ़ाने वाले एक फलस्तीनी को गोली मार दी गई है। रेड क्रिसेंट ने पुष्टि की है कि सेना की गोलीबारी से फलस्तीनी की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। शुरुआत करते हैं भारत से। आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शाम 5 बजे रुक गया। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान 28 नवंबर को होना है। दोनों ही मुख्य पार्टियां सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दावा है कि जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है और सरकार वही बनाएंगे। पेश है भोपाल से सूर्य न्यासी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर सोमवार को प्रचार थम गया। प्रदेश की सभी सीटों पर कांग्रेस और भाजपा ने धुआंधार प्रचार किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे सीधे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया, वहीं नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। आखिरी दिन भी दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत से जोर लगाया। अंतिम दिन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने धार, रतलाम और इंदौर में रोड शो करके लोगों को भाजपा के लिए वोट करने की अपील की। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने प्रदेशवासियों से पार्टी के हक में वोट करने की अपील की।
जैसा 2003 के पूर्व दिखाई देता था, सड़कों पर गड्ढे, गलियों में घरों में अंधकार, सूखे हुए पेड़, उजड़े हुए खेत, या फिर आज जैसा मध्य प्रदेश जैसा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है, चारों ओर उजाला, खेतों में लहराती फसलें और चमचमाती सरपट सड़कें, तय हम सभी को करना है। मेरा आह्वान है कि जो प्रगति चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं, जो उन्नति चाहते हैं, जो समृद्ध मध्य प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं और इसे अपने सपनों की तरह का प्रदेश बनाना चाहते हैं, वे सबसे पहले मतदान करें।
उधर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो प्रदेश में जारी 15 साल के भाजपा शासनकाल का अंत करें।
पिछले 15 वर्षों से जिन्होंने झूठ, झूठे वायदे, खोखले दावे, झूठे सपने दिखाए, उनसे हिसाब करने का समय अब आ गया है। आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है। सोच समझ कर मतदान करें। प्रदेश के विकास और भविष्य को सामने रख आप वोट करें।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों ही दलों के बीच लड़ाई लगभग बराबर की है और किसी भी तरह की कोई लहर देखने को नहीं मिल रही है। गिरजा शंकर कहते हैं,
अभी भी तार्किक रूप से देखें, जमीनी स्तर पर क्या है वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन तार्किक रूप से देखें तो एस तो बीजेपी का दिखता है कि कांग्रेस ने जो कैंपेन उसमें वो कैंपेन इतना आक्रामक नहीं था। 56 और 165 सीट का जो फासला है उसको पाट सके, इतना आक्रामक कैंपेन नहीं था। मतलब किसी भी एक मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर सके। कोई एक नया मुद्दा, वही व्यापम, वही तमाम जो पुराने मुद्दे 10 साल से चल रहे हैं, वही मुद्दे आते रहे। सिर्फ कांग्रेस को फायदा ये है कि बीजेपी को लेकर जो लोगों में बदलाव की चाहत है उसका जितना फायदा मिल जाए नेचुरल कोर्स में उतना ही फायदा है। वो क्वांटम कितना होगा ये कोई भी इसका आकलन नहीं कर सकता।
मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से भाजपा काबिज है और चौथी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस की कोशिश सत्ता में लौटने की है। लंबे प्रचार के बाद अभी भी दोनों ही पार्टियां बराबरी पर नजर आ रही हैं। वहीं आम मतदाता ने चुप्पी बनाए रखी है, इसलिए यह जानने में मुश्किल हो रही है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। सुरेश न्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, मगर इनमें भोपाल की एक सीट पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि यह अकेली सीट है जहां से पार्टी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, वो भी मुस्लिम महिला उम्मीदवार फातिमा रसूल सिद्दीकी नॉर्थ भोपाल सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है। बीजेपी ज्वाइन करने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें उम्मीदवार चुन लिया गया। उनकी उम्मीदवारी और राजनीतिक सोच पर बीबीसी संवाददाता भूमिका राय ने उनसे बात की।
मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछले 15 साल से है, राज्य में पार्टी की हुकूमत है, लेकिन इसी राज्य की एक सीट कांग्रेस का गढ़ है, वो सीट है नॉर्थ भोपाल की सीट। ये सीट मुस्लिम बहुल इलाके की है जहां कांग्रेस पार्टी के आरिफ अकील पिछले 5 बार से विधायक हैं, लेकिन इस बार बीजेपी इस गढ़ में सेंध लगाने का कोई मौका चूकना नहीं चाहती। बीजेपी ने कांग्रेस को मात देने के लिए मैदान में उतारा है फातिमा रसूल सिद्दीकी को। फातिमा का राजनीतिक सफर इसी चुनाव से शुरू हो रहा है। बीजेपी उनकी पहली पार्टी है और ये उनका पहला चुनाव, लेकिन इतने अहम चुनाव के लिए बीजेपी ने किसी नए चेहरे पर यकीन कैसे कर लिया, इस पर फातिमा खुद कहती हैं,
बीजेपी ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि उसको लगता है कि हम यूथ हैं और क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं लड़कियों को बहुत प्रमोट करते हैं। उनको ये समझ में आया कि मैं कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करूंगी, उनको ये समझ में आया कि मैं बेइंतहा काम करूंगी, मुझमें जोश है, जज्बा है, उनको ये समझ में आया कि मैं हर गली गली जाकर लोगों से मिलूंगी, अभी इलेक्शन के टाइम पे भी और इलेक्शन के बाद भी।
फातिमा की एक पहचान और है, वो कांग्रेस के नेता रहे रसूल अहमद सिद्दीकी की बेटी हैं और राजनीतिक गलियारों में उनकी पहली पहचान यही है। फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल रहे रसूल अहमद की बेटी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी क्यों ज्वाइन की? इसका जवाब देते हुए फातिमा कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस में जाने का सोचा नहीं था, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि वो इसका एक दूसरा पहलू भी सामने रखती हैं।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस से ही ना कांग्रेस के लोग, पुराना जमाना अलग था, अब बहुत चेंजेस आ चुके हैं।
फातिमा लगभग हर बात में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र करती हैं।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनमें मुझे वो क्वालिटीज देखने को मिली जो मेरे पिता ने मुझे जो शिक्षा दी है, जो मैं बार बार हर जगह बोलती हूँ, गंगा जमुनी तहजीब, क्योंकि हम लोग जो है वो खराब नहीं है, जो हम लोगों का फायदा उठा के हिंदू मुसलमान की राजनीति करके जो अपने फायदे के लिए जाते हैं वो खराब।
लेकिन क्या लोग नए चेहरे को मौका देना चाहेंगे? इस पर फातिमा कहती हैं,
देखिए मेरा ये मानना है कि जो हिंदू और मुसलमान कितने प्रतिशत हैं, इस चीज पे तो हम फोकस नहीं कर रहे, हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं उनको विकास की जरूरत है और इंशाल्लाह हम लोग कुछ विकास करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे और इस तरह से हमारी जीत हो।
फातिमा के साथ साथ ये चुनाव बीजेपी के लिए भी अपनी रणनीति को परखने का बड़ा मौका है, क्योंकि जहां फातिमा इस मैदान की नई खिलाड़ी हैं, वहीं आरिफ पिछले 5 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। भूमिका राय, बीबीसी दिल्ली।
राजस्थान में भी आज का चौतरफा चुनाव प्रचार परवान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3-3 सभाएं कर चुनाव माहौल को गर्मा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महेंद्र आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी चुनावी सभाएं संबोधित की। मोदी ने 2022 तक हर भारतीय के लिए पक्के मकान की बात की तो कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। जयपुर से नारायण बारेट की रिपोर्ट।
भारत माता की, भारत माता की।
फिजा में कहीं बीजेपी के तो कहीं कांग्रेस के नारे बुलंद हुए और नेताओं ने लंबे लंबे भाषण दिए। हर पार्टी के तरकश में अपने विरोधी के खिलाफ आरोपों के तीर थे और जनता के लिए वादों का गुलदस्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने भीलवाड़ा, कोटा और आदिवासियों के धाम में चुनावी सभाएं की। मोदी ने अपनी सभाओं में कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाया और कांग्रेस राज की कथित विफलताओं को सामने रखा। मोदी ने अपने भाषण में आतंकवाद, वंशवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया।
कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि 10 साल पहले 26 नवंबर को आतंकवाद की इतनी बड़ी भयंकर घटना घटी, सारी दुनिया हिल गई थी और कांग्रेस उसमें से चुनाव जीतने के खेल खेल रही थी। कांग्रेस ने सवाल उठाया, वीडियो दिखाओ, वीडियो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ, क्या देश का सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के निकलता है, क्या हाथ में कैमरा लेके जाएगा क्या? उस समय उनको देशभक्ति याद नहीं आई जिन माओवादियों ने भरतपुर के मेरे जवान को मौत के घाट उतार दिया। ये कांग्रेस के नेता इन माओवादियों को क्रांतिकारी होने के सर्टिफिकेट दे रहे हैं।
कोई नामदार तो कोई चौकीदार कहकर अपने विरोधी पर हमले बोल रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी जोधपुर, जालौर और पोखरण पहुंचे और जनता से मुखातिब हुए। गांधी ने कहा कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने का आरोप लगाया।
अच्छे दिन जनता के लिए आएंगे, अब नारा है चौकीदार, चौकीदार।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने पोखरण में सभा को संबोधित किया। पोखरण में कांग्रेस से फकीर परिवार के साले मोहम्मद हैं तो बीजेपी ने महंत प्रतापपुरी को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट भी सभाएं संबोधित करते रहे। इन सभाओं में नेताओं ने मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश की। उनकी तकरीरों में भविष्य के लिए सुनहरे ख्वाब थे और वादों की भरमार थी, लेकिन मतदाता तो अपनी राय मशीन का बटन दबाकर ही जाहिर करेगा। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। अयोध्या में पिछले तीन दिनों से बड़ी संख्या में लोगों के जमावड़े के बाद आज वहां के लोगों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने भी राहत की सांस ली। पहले शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और फिर विश्व हिंदू परिषद की धर्मसभा की वजह से तीन दिन तक यहां काफी हलचल रही। लोगों की भीड़ भाड़ कम होने के बाद शहर सामान्य स्थिति में लौट आया है, लेकिन इस दौरान स्थानीय लोगों ने क्या महसूस किया, यही जानने की कोशिश की है समीर आरपत मिश्र ने इस रिपोर्ट में।
अयोध्या के मुख्य बाजार में आज दुकानें सामान्य तरीके से खुली थीं। लोग दर्शन करने और सरयू स्नान के लिए भी सामान्य ढंग से जा रहे थे। सुरक्षा के लिए कुछ खास रास्तों की घेराबंदी ढीली जरूर की गई थी, लेकिन सुरक्षा कर्मी और पुलिस बल आज भी मुस्तैद दिख रहे थे। पहले दो दिन शिवसेना के कार्यक्रम और फिर कल यानी रविवार को विश्व हिंदू परिषद की धर्मसभा को लेकर यहाँ सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा भीड़ रही। रविवार को तो सारे अहम रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी, वाहनों के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी थी और दुकानें बंद थीं। फैजाबाद के DIG ओंकार सिंह ने कहा कि इंतजाम इस तरह किए गए थे कि किसी को कोई भी दिक्कत न हो।
जो बाईपास है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से चल रहा है और चलता रहेगा, इसकी हम लोग पूरी व्यवस्था कर रखे हैं। और बाकी दर्शन का कार्यक्रम, जो दर्शनार्थी हैं, जैसे रोज की तरह दर्शन करने के जो निर्धारित मार्ग हैं, उन मार्गों से दर्शन होंगे।
रास्तों और बाजार के बंद होने से स्थानीय नागरिकों को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई, लेकिन उन्हें इसका मलाल नहीं है।
जैसे अभी से विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था तो इसमें सब लोग आए थे, तो दुकानदार थे, अब दुकान तो बाहर खुली ही थी। अब कुछ ना कुछ दिक्कत जैसे मान लिया, और व्यापारी जो आना चाहते थे नहीं आए, बस यही हुआ और कोई दिक्कत नहीं हुई। अनुभव भाई, अब राम का मंदिर बनना है तो इसलिए जो दिक्कत भी हो तो दिक्कत सहना पड़ेगा आदमी को। कोई दिक्कत ऐसी नहीं हुई कि जो आदमी परेशान बहुत ज़्यादा हो।
हम यहाँ आए नहीं थे, अपने घर पर थे, दर्शन करने के लिए आए थे, दर्शन करके चले गए।
गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं लगा, यह कमाई हमारी की जाते, परेशानी रहा, चले फिरे क्या, परेशानी सबका परेशानी रहता है।
आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, मंडी भी खुली थी, सब्जी लेना था ना, सब्जी के लिए भी खुली थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस ये साधन बंद थे तो कल के लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं, कहीं ज़्यादा दूर तो जाना ही नहीं है, यहीं अपना अयोध्या में रहना था, सब्जी लेना, बनाना खाना, यही काम है।
वहीं दूसरी ओर मुस्लिम इलाकों की सुरक्षा के लिए जिस तरह से घेराबंदी की गई थी, उसके लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जा सकता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। टीढ़ी बाजार, मुगलपुरा, रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में सभी रास्ते बंद थे और हर जगह बड़ी संख्या में पुलिस, PAC और RAF के जवान तैनात थे। अधिकारियों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कई मुस्लिम परिवारों की शिकायत थी कि भीड़ की आशंका से वो डरे हुए हैं, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था ने इन लोगों का डर दूर कर दिया।
नहीं, हम लोग आ जा नहीं पा रहे थे और जो लोग आ रहे थे उनकी RD देखी जा रही थी, जो जो इस मोहल्ले के थे। अच्छा। बाकी किसी बाहरी आदमी को इस मोहल्ले में किसी को आने जाने की परमिशन नहीं थी। अच्छा। और सुरक्षा के बढ़िया इंतजाम थे। अगर इसी तरीके से 92 में इंतजाम हुआ होता तो आज हमारी बाबरी मस्जिद शहीद न की गई होती।
हम सबसे पहले योगी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने शासन स्तर से यहाँ के प्रशासन को इतना टाइट जो है रखा और यहाँ के प्रशासन ने बाखूबी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी जो है निभाई और काफी अच्छा यहाँ का माहौल रहा। यहाँ की जनता के अंदर जो डर था वो खत्म था।
अयोध्या के लोग रैली, भीड़भाड़ और ऐसे कार्यक्रमों के कुछ हद तक अभ्यस्त भी हो चुके हैं। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी अब पटरी पर जरूर लौट आई है, लेकिन लोग हंसकर कहते हैं कि ऐसा कितने दिनों तक रहेगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC अयोध्या।
वैसे इस समय जब आम चुनावों को बस कुछ महीने रह गए हैं और देश के 5 सूबों में चुनाव जारी हैं, राम मंदिर के मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े संगठन RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना वगैरह मांग कर रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। ये सब लोग मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह का अध्यादेश ला पाना संभव है, बता रहे हैं फैसल मोहम्मद अली।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर पर जल्द से जल्द कानून बनना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि ना जाने क्या कारण है, या तो अदालत बहुत व्यस्त है या राम मंदिर उसके लिए प्राथमिकता नहीं। इस स्थिति में सरकार को सोचना चाहिए कि वो मंदिर निर्माण के लिए किस तरह कानून ला सकती है। वो कानून जल्द से जल्द पेश होना चाहिए। लेकिन इस तरह का कोई कानून सरकार क्या ला सकती है, संविधान के जानकार और मशहूर वकील सूरज सिंह कहते हैं।
देखिए, कानून की लीगल कैपेसिटी के अनुसार अगर देखा जाए तो सरकार को ये पावर है कि वो कानून बना सकती है अगर उसके पास सफिशिएंट मेजोरिटी है। लेकिन कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है।
संविधान के मूल में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसी भावनाएं निहित हैं। मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह भी कुछ इसी तरह की बात कहती हैं।
क्योंकि एक धर्म के लिए कानून नहीं बन सकता, और वो भी एक धार्मिक संस्था के लिए कोई कानून नहीं बन सकता, तो इसीलिए सेक्युलरिज्म पे भी चुनौती होगी। और आपको पता ही है कि सेक्युलरिज्म को अब बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। बेसिक फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के वो फीचर्स होते हैं जिनको पार्लियामेंट को भी हाथ नहीं लगा सकते, और उनमें से एक है सेक्युलरिज्म और है डेमोक्रेसी, इक्वालिटी। ऐसी बातें भी बेसिक फीचर्स में है जिनको पार्लियामेंट भी हाथ नहीं लगा सकती।
इसके बावजूद अगर सरकार इस मुद्दे पर कानून ले भी आती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और अगर अदालत को कहीं भी लगता है कि नया कानून संविधान की किसी भी भावना के विपरीत है तो वो उसे रद्द कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने चंद महीनों पहले ही समलैंगिकता को जुर्म मानने वाले कानून को इस आधार पर रद्द कर दिया था क्योंकि वो समानता के अधिकार के विपरीत था। केरल के सबरीमाला के संबंध में भी जो फैसला अदालत ने दिया था वो इसी मूल भावना पर आधारित है कि क्या लिंग के आधार पर किसी को कहीं जाने से रोका जा सकता है। सूरज सिंह,
सेक्युलर कैरेक्टर जो है इंडिया का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको वायलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब जहां मेजोरिटी के राइट्स का प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वहां माइनॉरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है, कानून देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पड़ोसी की प्रॉपर्टी जब्त कर लें।
शायद यही वजह है कि हाल के दिनों में तमामतर दावों के बावजूद राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा कोई बिल नहीं ला पाए। राकेश सिन्हा ने कहा था कि वो राम मंदिर निर्माण को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। उन्होंने दूसरे दलों जैसे कांग्रेस और वामपंथियों से भी ये सवाल उठाया था कि क्या वो इस तरह के बिल को सपोर्ट करेंगे या नहीं, लेकिन इस बारे में किसी तरह के किसी मसौदे को लेकर उनकी तरफ से अब खामोशी बनी हुई है।
ये थी फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का,
आपकी राय। और इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मोहनलाल शर्मा, और मेरे साथ मुस्कुराती हुई मौजूद हैं सूर्यांशी पांडे।
आपने मुस्कुराहट के साथ ही मेरा परिचय भी किया। तो आज मोहनलाल जी, सबसे पहले जो खत हम पढ़ेंगे वो प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का पढ़ेंगे जो कैथनपुरवा सातनपुरवा से लिखते हैं, अमेठी, उत्तर प्रदेश।
अब प्रमोद कुमार श्रीवास्तव हमारे बहुत ही पुराने रेगुलर श्रोता हैं और लगभग हर कार्यक्रम के बाद अपनी एक टिप्पणी जरूर देते हैं कि कार्यक्रम में उनको क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया, ये भी विस्तार से लिखते हैं वैसे।
हाँ, और इनको आजकल कमी महसूस हो रही है राजेश जोशी जी की, जो कह रहे हैं कि इनकी कमी हमें बहुत खल रही है। उसके अलावा इन्होंने दुनिया जहां की तारीफ की है जो आदर्श राठौर द्वारा संचालित की गई थी, मानसी दास की रिपोर्ट इन्हें बेहद पसंद आई थी।
राजेश जोशी को आप मिस कर रहे हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि राजेश जोशी आजकल बीबीसी की नेपाली सेवा के साथ काम कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद वो जल्द ही बीबीसी हिंदी सेवा यानी कि आपसे मुखातिब होंगे। जहां तक मानसी दास की रिपोर्ट की बात है, आपको पसंद आई, और इसके अलावा आपने आदर्श राठौर के दुनिया जहान की तारीफ की है, मानसी दास की रिपोर्टिंग की तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और इसी तरह से कार्यक्रमों के बारे में आप अपनी राय लिखते रहें, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। वैसे प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी, आप लगातार वैसे भी अपनी राय देते रहते हैं और इसे लगातार जारी रखिए, थैंक यू।
और देखिए मोहनलाल जी, आज आपको हिचकी आई थी क्या?
कोई याद कर रहा है?
हाँ, कोई नहीं, बल्कि इनका नाम है रमेश बांका, बिहार से। और इन्होंने लिखा है कि हमें एक शिकायत है कि बहुत दिनों से मोहनलाल शर्मा द्वारा कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, कृपया उन्हें भी मौका दिया।
बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हौसला अफजाई की। और जहाँ तक मौके की बात है तो भाई आपके सामने आज आपके खतों के साथ मैं उपस्थित हूँ, तो आप जो ये चाहते हैं ये इच्छा आपकी पूरी हो गई।
दूसरा मेल भेजा है सादिक आजमी ने सऊदी अरब से, जिन्होंने कहा है कि बड़े राजनीतिक बदलाव में खूनी संघर्ष तथा श्रीलंकाई सरकार के जवाबी तेवरों पर की गई विवेचना उन्हें बेहद पसंद आई।
मैं जानता हूं कि ये रेहान फजल की विवेचना की बात कर रहे हैं, जो कि चरमपंथी संगठन LTTE पर आधारित थी और उनके जो प्रमुख हैं वो प्रभाकरण पर आधारित थी और इस विवेचना की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल प्रभाकरण पर जो रेहान फजल ने अपनी विवेचना प्रस्तुत की उसमें उन्होंने उन तमाम पहलुओं को बताया जो कि उनकी जिंदगी से जुड़े हुए थे, और ये काफ़ी शोध परक विवेचना आपने सुनी थी रेहान फजल की, बहुत बहुत शुक्रिया।
यहाँ पर अतहर सलीम जो हैं वो कोइरीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, और इन्होंने विवेचना और दुनिया जहाँ दोनों की साथ में तारीफ की है। उन्होंने बोला कि उनका पूरा परिवार साथ में बैठकर जो है ये पूरा कार्यक्रम सुनता है।
बीबीसी हिंदी के दो कार्यक्रम यानी कि विवेचना और दुनिया जहान एक ऐसे कार्यक्रम है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, खासकर वो चीज़ें जो कि इतिहास में घटी हुई हैं उसके लिए विवेचना कार्यक्रम है, और दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के वर्तमान परिदृश्य में किस तरह की घटनाएं घट रही हैं उसका सतही नहीं बल्कि बारीक विश्लेषण होता है दुनिया जहान में। और हमारे सभी प्रस्तुतकर्ता चाहे वो आदर्श राठौर हों, कुलदीप मिश्र हों, संदीप सोनी हों, इस कार्यक्रम को बहुत ही तहे दिल से शोध परक तरीके से इसको बनाते हैं।
अगला खत भेजा है राजस्थान से मदन लाल लंबोरिया ने, जिन्होंने कहा है कि रेहान फजल, मोहन लाल शर्मा, आदेश गुप्त, आदर्श राठौर की ये जो जोड़ी है, मतलब उन्होंने जोड़ियां बोली हैं, और महिलाओं में सरप्रिया सांगवान, सूर्यांशी पांडे, कमलेश मथनी की जो जोड़ी है वो खबरों की निष्पक्षता से श्रोताओं की झोली भर देती है।
अगर आपको इनकी प्रस्तुतियां अच्छी लगती हैं और बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिलती हैं तो हमारा जो मकसद है यानी कि जो बीबीसी हिंदी सेवा का मकसद है वो पूरा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन शब्दों का और हौसला अफजाई का।
अगला मेल भेजा है गौतम दत्ता ने किशनगंज बिहार से, जो लिखते हैं कि रविवार शाम की सभा में आदेश कुमार गुप्त की जोशीले अंदाज में T20 की जीत और मैरी कॉम का विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छठा गोल्ड मेडल जीतना, ये रिपोर्ट बेहद रोमांचक लगी।
यही खासियत है आदेश कुमार गुप्त की कि वो खेल के समाचारों को अपनी गति के साथ, अपनी आवाज के साथ प्रस्तुत करते हैं, और आप तक उनकी ये रिपोर्ट पहुंची, पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मुझे लगता है कि कार्यक्रम में और चिट्ठियों का वक्त नहीं है, इसलिए सूर्यांशी पांडे हमें श्रोताओं से विदा लेनी चाहिए।
बिल्कुल,
लेकिन चलते चलते पता जरूर बता दें आपकी राय। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। फिर मिलेंगे आपकी चिट्ठियों के साथ। नमस्कार।
और अब देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ओडिशा, जहां पर 28 नवंबर से पुरुष हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है, और इस बार इस टूर्नामेंट का प्रसारण भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पुरुष हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट के मैचेस विश्व के 194 देशों में प्रसारित किए जाएंगे। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 2014 में हुए पिछले संस्करण की तुलना में इसके प्रसारण में 150% की वृद्धि हुई है। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। और आपको अगर क्रिकेट की ओर लेकर चले तो ये खबर भारत की बधिर ICC T20 वर्ल्ड कप की है। भारत ने बधिर ICC T20 वर्ल्ड कप में नेपाल को 10 विकेटों से हरा दिया है। नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन नेपाल 67 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत ने बिना कोई विकेट गवाए ये टारगेट हासिल कर लिया।
और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर बुधवार को होने वाले मतदान से पहले आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। भारत में मुंबई हमले की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। मुंबई पर साल 2008 में आज ही के दिन पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए लश्कर ए तैयबा के चरमपंथियों ने एक साथ कई जगहों पर हमला किया था। संयुक्त अरब अमीरात ने ब्रिटेन के शोधार्थी मैथ्यू हेजेस को माफ कर दिया है, जिन्हें पिछले हफ्ते जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। यूक्रेन की नौसेना के 3 जहाजों को रूस द्वारा जब्त किए जाने की प्रतिक्रिया में यूक्रेन की संसद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और नेटो देशों के तमाम राजदूत आपात बैठक के लिए तैयार हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।